ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिता महामे समरे मरंजय, देवव्रताद्यादिरथैस्तिमिङ्गलैः दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम् कृत्वा तरणवत्स पदं स्मजत् प्लवः। पिता महामे समरे मरंजय, देवव्रताद्यादिरथैस्तिमिङ्गलैः दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम् कृत्वा तरणवत्स पदं स्मजत् प्लवः।
Yes, sir.
श्री लक्ष्मीदेव गोस्वामी से प्रश्न करने के पहले महाराज परीक्षित अपने पितामहों की याद कर रहे हैं। उनके पितामह अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन और नकुल सहदेव थे, पंच पांडव। तो उनको याद आ रही है या सुने हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण ने बहुत उनकी सहायता किया, बहुत तरह से रक्षा किया। पितामह में मेरे पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों से युद्ध कर रहे थे। कौरवों की सेना क्या थी, बहुत बड़े समुद्र के समान। कौरव सैन्य सागरम, कौरवों की सेना एक तो विशाल थी और बहुत से जल जंतुओं से भरी हुई थी, जिसमें सबसे बड़ा खतरनाक जल का जीव है तिमी, 100 योजन लंबा और उसी हिसाब से चौड़ा। 100 योजन मतलब 400 कोस, 800 माइल, 800 मील लंबा मत्स्य होता है तिमी, उसको तिमी कहते हैं। और तिमी को जब निगल जाए उसको तिमिंगल कहते हैं। ऐसे ऐसे अतिरथी थे कुरुक्षेत्र में, जिसमें सर्वप्रधान थे देवव्रत अर्थात भीष्म पितामह। देवव्रताद अतिरथ है तिमिंगल है अतिरथ। अतिरथी उसे कहते हैं जो असंख्य रथियों के साथ युद्ध कर सकता है। तो उस कौरव सेना में अतिरथी थे तिमिंगल की तरह। बताइए जो 100 योजन 800 माइल 800 मील की मत्स्य को पकड़ करके खा सकता है तो कितना बड़ा जीव है। ऐसे तिमिंगल की तरह थे। और पांडव बेचारे पड़ गए थे युद्ध में। पर किसकी कृपा से पार हुए? केवल भगवान कृष्ण की कृपा से। सो तीर्णा खड़ पांडव रण नदी कैवर तक केशव। चूंकि नौका खेने वाले सहारा केशव थे, इसलिए उस सेना को, उस कौरव सेना को जीतने में, उसको पार करने में पांडव सक्षम हुए। एकमात्र कारण है कि कैवर तक केशव, उनके आश्रय केशव थे। उसमें बड़े बड़े जो सेना नायक थे उसमें सर्वप्रधान थे देवव्रत, देवव्रताद्यी। देवव्रत जिसमें आदि थे अर्थात प्रधान, ये सब तिमिंगल मत्स्य की तरह भय उत्पन्न कर रहे थे। भीष्म पितामह 10 दिन कौरवों के सेनापति थे और प्रतिदिन वे 10,000 रथियों का वध कर रहे थे। दस हजार रथी को मारते थे, उनका वध करते। वास्तव में वे भगवान का ही काम कर रहे थे, बहुत बड़ी सेना का संहार कर रहे थे, तो भगवान के मिशन को पूरा कर रहे थे। भगवान इसी उद्देश्य से अवतार लिए हैं, पृथ्वी का भार दूर करें। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भीष्म पितामह मदद कर रहे थे। पर उनकी इस वीरता को देखकर अर्जुन घबरा गए। और श्री कृष्ण को, भगवान को एक अवसर मिल गया, क्योंकि अर्जुन कुछ समय के लिए थकावट का अनुभव कर रहे थे, उनको पसीना आ गया, इतना बाण वर्षा कर रहे थे भीष्म पितामह। तो वे कुछ देर के लिए अपना पसीना पोछने लगे। भगवान कृष्ण ने देख लिया कि अर्जुन को पसीना आ रहा है, तब उनको ऐसा ध्यान आया कि ये तो अर्जुन को मार ही डालेंगे, इसलिए भगवान ने तुरंत अपना चक्र उठा लिया। उनको आदत है सुदर्शन चक्र चलाने की, सुदर्शन के बदले वे रथ का पहिया उठा करके भीष्म को मारने के लिए चल दिए। जब भीष्म देखे कि भगवान आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, तो वे हाथ जोड़ करके तैयार हो गए, कहने लगे कि हे पुंडलीकाक, हे पुंडलीक नयन, आप आइए, मेरा वध कीजिए। पर तुरंत अर्जुन पीछे से भगवान को पकड़ लिए, कहने लगे आप ये क्या कर रहे हैं, आपने तो प्रतिज्ञा किया है कि इस युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, आप विश्वविख्यात इस प्रतिज्ञा को कैसे तोड़ रहे हैं। कमर पकड़ कर खींचने लगे, भगवान अर्जुन को खींचते हुए जा रहे थे भीष्म पितामह के पास, क्रोध का नाटक कर रहे थे। वास्तव में भीष्म पितामह पर वे प्रसन्न थे, क्योंकि भगवान के मिशन को पूरा कर रहे थे। बहुत से वीरों को मार रहे थे, इससे भगवान प्रसन्न थे। परंतु बाहर से क्रोध दिखाते हुए वे भीष्म को मारने के लिए जा रहे थे। और भीष्म पितामह पहले तो बाणों की वर्षा कर रहे थे, भगवान पर भी बाण चलाने, भगवान का कवच टूट गया था। और उनके दिव्य श्री विग्रह से रक्त निकल गया था, चूरा था, खून बह रहा। भगवान उस समय क्षत्रिय के आवेश में है, गोप आवेश में नहीं। क्षत्रिय पर जब अस्त्र लगते हैं वह प्रसन्न होता है, क्योंकि क्षत्रिय आवेश में है इसलिए उनको बाण अच्छा लगा भीष्म पितामह का, उनसे लखपत हो गए। अंत में अर्जुन ने उनको रोक लिया, आप मत उठाइए अस्त्र, मैं युद्ध करूंगा, ताकत से युद्ध करूंगा। तब भगवान रुक गए। वास्तव में भगवान अपने भक्त हैं, भीष्म की बात को रखने के लिए अस्त्र उठाए थे, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा किए। एक दिन युद्ध के पहले दिन दुर्योधन गया भीष्म पितामह के पास और रोने लगा कि आपके रहते हुए मेरी पराजय हो जाएगी, ये उचित नहीं है। आक्षेप कर दिया कि आप अर्जुन के साथ नम्रता का व्यवहार कर रहे हैं लड़ाई में, जब अर्जुन आपके साथ आते हैं तब आप स्नेह से भर जाते हैं। आप पक्षपात कर रहे हैं। भीष्म पितामह को इस बात से तकलीफ हुई, कोई वीर किसी पक्ष से लड़ रहा है और ये लांछन लगाया जाए कि ये विपक्ष से मदद कर रहा है या इसके अनुकूल है, तभी बहुत दुख की बात है। भीष्म पितामह ने कहा क्या कहते तुम, तो दुर्योधन ने कहा कि मैं यही चाहता हूं कि आप पूरी शक्ति लगा करके युद्ध कीजिए, अर्जुन के सामने आप अपनी शक्ति को पूरा खोल दीजिए। इसी पर भीष्म पितामह ने कहा देखो कल मैं युद्ध करूंगा, लेकिन अर्जुन के रक्षक भगवान हैं, उनका कोई बाल भंकर नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक काम करूंगा कि इतना भीषण युद्ध करूंगा कि अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे। उन्होंने जो इस युद्ध में नियम लिया है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा तो मैं कृष्ण से अस्त्र उठवा दूंगा, दुर्योधन से यह कहा था भीष्म पितामह ने, अर्जुन को मारा नहीं जा सकता है। लेकिन इतना हो सकता है कि भगवान को अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देनी पड़े, तो इस पर दुर्योधन प्रसन्न हुआ ठीक है, यदि कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग होती है अस्त्र उठा लेते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, इससे कृष्ण की बेइज्जती होगी, सारे संसार में अपजस होगा। लेकिन अपजस होने की तो बात दूर रही, और जस बढ़ गया कि भगवान भक्त वत्सल है, वे अर्जुन की रक्षा के लिए और अपने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। बताइए 10,000 रथियों का वध कर रहे थे रोज और उनका कोई कुछ भी नहीं कर रहा, इस युद्ध में अर्जुन ही मुलायम से युद्ध कर रहे थे, पितामह को मारना नहीं चाहते। जब भगवान ने उकसाया तब ये तीखे तीखे बाणों की चोट करने लगे। इस तरह से भीष्म पितामह एक प्रथम तिमिंगल है इस कौरव सैन्य सागर में। दूसरे भयावह तिमिंगल थे द्रोणाचार्य अपने पुत्र के वियोग में सुन करके बेहोश हो गए और बैठ गए युद्ध छोड़ करके। उनके रंध्र ब्रह्मरंध्र से प्राण निकल गए। यदि वे इस तरह शोक से ग्रस्त नहीं हुए होते और पुत्र के विरह में उनका प्राण नहीं गया होता है तो पता नहीं क्या होता है। ये सब भगवान की कृपा थी। वही भीष्म को मरवाए और द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य ने कहा था युधिष्ठिर से कि मैं अपने पुत्र से इतना प्रेम करता हूं कि मैं उसका वियोग सह नहीं सकता। तब भगवान कृष्ण एक उपाय किए, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारकर उन्होंने जोर से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हतो। कई लोग कह रहे थे परंतु द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं। उन्होंने कह दिया यदि युधिष्ठिर कहता होगा तो मैं मान लूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज भी कह दे अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, अश्वत्थामा मारा गया मनुष्य या हाथी उनको पता नहीं है। इतना एक बार झूठ बोल रहे युधिष्ठिर महाराज। पर भगवान के कहने से वे असत्य बोले, उनको पता था कि हाथी मारा गया है, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया है। अश्वत्थामा वीर नहीं मारा गया। पर जब युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया है, वे बोल रहे थे संस्कृत में अश्वत्थामा हतो और बाद में कह देते नरो व कुंजरो। जब एक वाक का अर्धांश पूरा कर रहे थे अश्वत्थामा हतो तो साफ सुनाई पड़ रहा है युधिष्ठिर बोल रहे हैं। और जब ये कहते थे कि नरो वा कुंजरो मनुष्य अथवा हाथी, उस समय भगवान बहुत जोर से शंख बजा देते थे। तो उस आधे वाक्य को द्रोणाचार्य नहीं सुन पाए। उसी समय वे बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए पुत्र के विरह में। और धृष्टद्युम्न ने आकर के उनकी गर्दन को काट लिया। द्रौपदी के भाई उनकी गर्दन को काट लिए। द्रोणाचार्य 5 दिन सेनापति रहे कौरवों के। जब वे मर गए तब उसके बाद कर्ण सेनापति हुए। ये भी अतिरथी थे। यदि इन वीरों पर कोई आकस्मिक संकट नहीं आया होता तो पांडवों के लिए समर जीतना बड़ा कठिन था। कि कवि ने कहा है कि यदि कर्ण के रथ का पहिया धसा नहीं होता है, पृथ्वी में कर्षा नहीं होता है, पांडवों की सेना को चबेना की तरह समाप्त कर सकते थे, परंतु उनके रथ का पहिया धस गया धरती में। उसी समय अर्जुन प्रहार करने लगा उनको, और अंत में शिखंडी नहीं धृष्टद्युम्न आकर के उनका मस्तक काट दिया। द्रोणाचार्य वो कर्ण के रथ का पहिया धस गया और निकला नहीं फिर, और भगवान कह रहे थे बार बार कि इसको मारो, ये कर्ण बड़ा दुष्ट है। अर्जुन के प्रहार से कर्ण धराशायी हुए, वे दो दिन सेनापति थे। उसके बाद अश्वत्थामा सेनापति हुआ, कर्ण भी बहुत बड़ा संहार किया था पांडवों का। कर्ण के सेनापतित्व काल में अद्भुत युद्ध हुआ था, त्राही त्राही मच गई। पांडव सेना कह रहे थे हे केशव आप ही कुछ उपाय कीजिए, त्राही त्राही का यही अर्थ होता है रक्षा करो रक्षा करो। लगता है कि ये कर्ण सबका वध कर देगा, यहां तक कि एक दिन के युद्ध में वह अर्जुन के अलावा पांच चारों पांडवों को पकड़ लिया, बहुत तीखे तीखे बाण मारा, पर ये कह करके छोड़ देता था कि मैं माता से कुंती से कह चुका हूं मैं अर्जुन के अलावा किसी को नहीं मारूंगा, इसलिए तुमको छोड़ रहा हूं। एक दिन युधिष्ठिर महाराज पर उसने बहुत तीखे बाण मारे, युधिष्ठिर महाराज घायल हो गए, तो असमय में उनके सारथी उनको लेकर के कैंप में चले गए, शिविर में चले गए, युद्ध छोड़ दिए। अर्जुन को पता लगा इनको कर्ण ने बहुत घायल कर दिया है और वे राजा जो भेजते अपने शिविर में विश्राम करने चले गए। तब भगवान से उन्होंने कहा कि मेरे रथ को जल्दी युधिष्ठिर महाराज के शिविर में पहुंचाइए, मैं देखना चाहती हूँ ये कैसे है। युधिष्ठिर महाराज को देखने के लिए अर्जुन गए भगवान कृष्ण के साथ, तो अर्जुन को देखते ही युधिष्ठिर महाराज ने कहा आओ आओ अर्जुन, वास्तव में तुम बहुत अच्छा काम किए हो, तुम उस दुष्ट कर्ण को मार दिए, बहुत अच्छा किए। इतना सुनते ही अर्जुन ने कहा महाराज मैं कल उसका वध कर दूंगा, अभी मैं नहीं उसका वध किया। इतना सुनते हैं जो युधिष्ठिर महाराज क्रोध से भर गए और अर्जुन को लगे कहने तुम गांडीव धनुष बेकार धारण करते हो, इस गांडीव को कृष्ण को दे दो या चाहे भीम को दे दो, तुम नपुंसक हो, तुम में कोई शक्ति नहीं है, तुमने अभी तक कर्ण को नहीं मारा। इतना सुनते ही अर्जुन तलवार निकाल ली, अभी युधिष्ठिर महाराज का वध करने के लिए। तो भगवान ने पूछा यहां तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, ये तलवार किस लिए निकाल है? तो अर्जुन ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा किया था कि जो कोई भी यह कह देगा कि गांडीव धनुष के धारण करने का अधिकार तुमको नहीं है, तुम अयोग्य हो, इसको दूसरे को दे दो तो मैं उसका मस्तक काट लूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, अतः अपने प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए मैं युधिष्ठिर महाराज का मस्तक काटूंगा। तो भगवान ने समझाया, कहा कि देखो जैसे तैसे प्रतिज्ञा नहीं की जाती है, तुम प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हो ठीक है करो, लेकिन अपने गुरुजनों का बड़े लोगों का अपमान कर देना ही उनका वध है। तुम युधिष्ठिर महाराज को दो चार अपशब्द बोल दो, इसी से इनका वध हो जाएगा, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। तब अर्जुन भगवान के संकेत को पा करके युधिष्ठिर महाराज को न कहने लायक उपात कहने लगे, तुम बहुत बड़े जुआरी हो, जुआ में तुमने द्रौपदी को हार दिया, हमारा राज्य भी गया, और कर्ण तुम पर प्रहार किया तो आकर के अबला की तरह कराह रहे, इतना सुनते ही महाराज युधिष्ठिर कहने लगे कृष्ण बंद करो युद्ध, युद्ध नहीं होगा, हमको राज्य नहीं चाहिए। फिर अर्जुन तलवार टांग दिए अपने को मारने के लिए, भगवान ने पूछा अब किस लिए तलवार तैयार कर रहे, तब अर्जुन ने कहा कि मैं अपना वध करूंगा, क्योंकि मैंने बड़े भाई का, राजा का अपमान किया, मैं जीवित नहीं रहना चाहता। तो भगवान ने कहा ठीक है, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करो, इससे तुम्हारा वध हो जाएगा। अपने मुख से अपनी बड़ाई करना मरने के समान है। तुम अपना गुण दो चार गाओ, इसी से तुम मर जाओगे। तो अर्जुन भगवान का इशारा पाकर कहने लगे, मैं अकेले स्वर्ग में गया, दैत्यों से युद्ध किया, मैं द्रौपदी को स्वयंवर में प्राप्त किया, भगवान शिव को संतुष्ट किया, युद्ध में बहुत बड़ा बड़ा काम किया, तो अपने मुख से प्रशंसा करने से अर्जुन सच्चा गए। फिर तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अब तुम्हारी मृत्यु हो गई, यह बहुत बड़ी बात है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना या सुनना अपनी मृत्यु के समान है। तो इन भारी संकटों से भगवान बचाए, अपने आप अर्जुन मर गए होते यदि भगवान नहीं होते। और कर्ण जब सेनापति था, इसी समय उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर लिया था कि मैं जयद्रथ का वध करूंगा, क्योंकि जयद्रथ अभिमन्यु का वध करने में कारण बना था। उनकी प्रतिज्ञा यह थी कि यदि मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो स्वयं आग में जल करके मर जाऊं। उस दिन सारे प्रधान सैनिक जयद्रथ को घेरे हुए थे। जयद्रथ सुन करके डर गया था और ये सोचता था कि आज अर्जुन के सामने नहीं होना है। युद्ध समाप्त हो गया था, उस दिन पूरा होने वाला था। उस समय भगवान कृष्ण ने ऐसा काम किया कि सुदर्शन चक्र से, अपनी माया से सूर्य को छिपा दिया। ऐसा हुआ कि लोगों को यह विश्वास हुआ कि अब रात्रि आ गई, रात में युद्ध समाप्त हो जाता था। नियम था कि इतने से इतने समय तक युद्ध हो सकता है। तब अर्जुन प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए तो अपने जलने के लिए चिता बनाने लगे। जलने के लिए जा रहे थे चिता में, उसी समय प्रकाश छा गया। सब लोगों ने देखा कि अभी सूर्य डूबा नहीं है। भगवान ने संकेत किया अर्जुन को, जब तुम जलने जा रहे हो तो अपने धनुष के साथ चलो। तो अर्जुन गांडीव धनुष को लेकर के सोए थे, किताब है, अब आग लगाना बाकी था। अब दिन आ गया तो भगवान शंकर के अभी दिन है, तुम जयद्रथ का वध करो। तो उन्होंने अपने धनुष पर बाण का संधान किया और जयद्रथ का मस्तक काट दिया। क्या केवल भगवान की कृपा से ही होता है? जयद्रथ स्वयं ही एक बहुत बड़ा अतिरथी था। उसके पिता ने वर मांगा था भगवान शिव से, भगवान शंकर से, कि यदि कोई हमारे पुत्र का मस्तक काट करके जमीन पर गिरा दे तो उसके 100 मस्तक टुकड़े हो जाए, मस्तक के 100 टुकड़े हो जाए, और उसी का मस्तक मेरे पुत्र के मस्तक पर जुड़ जाए। इस बात का पता अर्जुन को नहीं था, भगवान को पता था। भगवान ने कहा मस्तक को जमीन पर मत गिरने दो, जयद्रथ के सिर को अर्जुन के बाण ने उड़ा लिया आकाश में, जमीन पर नहीं गिरने दिया। और उसका पिता किसी सरोवर पर संध्या कर रहा, उसी के गोद में मस्तक गिरा और देखा कटा हुआ मस्तक मेरे गोद में गिरा तो वो घबरा गया। तो तुरंत उसको जमीन पर पटक दिया कि क्या है। उसी समय जयद्रथ के पिता का मस्तक 100 टुकड़ा हो गया। यदि भगवान युक्ति नहीं बताए होते तो अर्जुन जल गए होते या जयद्रथ के मस्तक को भी जमीन पर गिराने के कारण वे उनका सिर 100 टुकड़ा हो गया हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भगवान रक्षक हैं, एक कवि ने एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक लिखा है, भीष्म द्रोण तथा जयद्रथ जला, गंधार निर्लोक पला। शल्याग्राहवती कृपेण बहनी कर्णे न बेला कुला, अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरम। सो तीर्णा खलो पांडव रण नदी कैवर तक केशवर। इस अपार सेना को, इन सैनिकों की शक्तियों को पार कर रहे पांडव, क्योंकि इनके आश्रय केशव केशव है। कवि ने इस युद्ध का वर्णन किया है कि कौरवों की सेना एक भीषण नदी के समान थी, रण नदी। उस नदी के दोनों तट थे द्रोण, भीष्म द्रोण तटा, जयद्रथ जला, और जयद्रथ उसमें जल था उस नदी में। गंधार निर्लोक पड़ा, और गंधार गंधार देश का व्यास, गंधारी का भाई शकुनी, उसने इस नदी में समुद्र में नीलोत्पला नीले रंग का पत्थर उठा जो दिखाई नहीं पड़ता है, जल के भीतर पड़ता है, जिस पर काई लगी होती है। बड़े बड़े विमान, बड़े 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 नौकाएं टकरा करके फट जाती हैं, व्यक्ति उसमें डूब जाता है, थोड़ा भी पांव पड़े पत्थर पर तो डूब जाएगा। तो गंधार शकुनी उस रण नदी में नीलोत्पल था, नीला पत्थर, संडय ग्राह होती और उस नदी में मगरमच्छ था शल्य। शल्य ये खास नकुल सहदेव के मामा थे, ये आ रहे थे अपने भांजों की सहायता के लिए, युधिष्ठिर की सहायता के लिए आ रहे, परंतु दुर्योधन ने कूटनीति से उनको अपने पक्ष में कर लिया। इतना स्वागत किया रास्ते में, सब जगह कैंप बनाया, सेना को ठहराया, उनकी सेना चली युधिष्ठिर के पक्ष में होने के लिए, सहायता करने के लिए। लेकिन दुर्योधन बहुत खाने पीने की व्यवस्था किया, बहुत गेस्ट हाउस बनाया, बहुत बड़ा सम्मान किया और सम्मान को स्वीकार करते गए शल्य। अंत में वे हस्तिनापुर पहुंचे तो उनको पता लगा कि ये सारा स्वागत की सामग्रियां राजा दुर्योधन के द्वारा की गई थी। दुर्योधन इस विषय में बहुत चतुर था, बड़ा राजनीतिज्ञ था, वो किसी के मन को अपने फेवर में कर देना बहुत जानता था। यही उपाय उसने भगवान कृष्ण को भी अपने बस में करने के लिए किया, बहुत शिविर लगाया था रास्ते में, बहुत सुंदर सुंदर गेट बनाया ठहरने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, बहुत से सेवक तैयार किया, बड़ा बड़ा किचन चलता था रास्ते। भगवान तो उसके घपले में नहीं पड़े, लेकिन शल्य पड़ गए। ये कहे दुर्योधन से, दुर्योधन मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आपने मेरा बड़ा स्वागत किया, मैं क्या करूँ। तब दुर्योधन ने कह दिया कि आप क्षत्रिय हैं, मेरे पक्ष से आप युद्ध कीजिए। तो उन्होंने स्वीकार कर दिया। शल्य अतिरथी थे कौरव सेना, इनका वध किया युधिष्ठिर महाराज ने, इन्होंने स्वयं अपने मुख से बताया कि मेरा वध कैसे हो रहा है। तो जब युधिष्ठिर महाराज प्रणाम करने गए तो शल्य ने कहा कि तुम्हारी विजय हो। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि आप मेरी क्या मदद करेंगे युद्ध में। तब शल्य ने कह दिया, मैं कर्ण का सेनापति बनूंगा, नहीं सारथी बनूंगा, और जब कर्ण अर्जुन से युद्ध करने आएगा तो मैं कर्ण को हतोत्साहित करूंगा। मैं लड़ूंगा कौरों की तरफ से, दुर्योधन की तरफ से, लेकिन तुम्हारी कुछ सहायता करूंगा। तो जो युद्ध करने जा रहा है महारथी, उसको ऐसी बात कहना कि उसका मनोबल कम हो, तो अर्जुन के सामने तो कर्ण कुछ नहीं था, लेकिन कर्ण अपनी बड़ाई कर रहा था। तब शल्य उसको समझा रहे थे और अंत में उन्होंने कह दिया, तुम निश्चित मरोगे, जिसके सहारे भगवान है उसका तुम क्या कर सकते हो। अर्जुन की बहुत बड़ाई की है, तो कर्ण का मनोबल कम हो गया। उसके मन में यह आशंका रहती थी कि अर्जुन मुझको मार सकते हैं। केवल शल्य की बात से शल्य इस रण नदी में, युद्ध नदी में ग्राह के काम कर रहे हैं। ग्राह मतलब मगरमच्छ, कृपेण बहनी कर्णेन बेलाकुड़ा, और कृपाचार्य इस नदी की प्रखर धारा के समान थे। कर्णेन बेलाकुड़ा और कर्ण बहुत सी तरंग के समान था, जो बेला को, नदी के तट मर्यादा को उतार तरंगों से डुबा रही थी। भयंकर नदी में जब बाढ़ आती है तो तट को डुबा लेती है, और कोई किनारे भी पड़ जाए नदी में तो बह जाता है। अश्वत्थामा विकर्ण, अश्वत्थामा और विकर्ण ये घोर मकर के समान थे, मगर नक्र। परंतु इस घोर नदी से, युद्ध से पांडव स्वोत्तीर्ण सा उत्तीर्ण आसानी से उत्तीर्ण हो गए, पार हो गए। क्यों? कारण था कैवर तक केशव, क्योंकि इस तरणी को खेने वाले स्वयं भगवान थे। इस पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर प्रपर्ट दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि कृष्ण का आश्रय लेता है, भक्त बनता है, तो वह व्यक्ति भवसागर को वैसे ही पार कर सकता है आसानी से, जैसे आसानी से अर्जुन पार कर गया कौरव सेना, इतना आसानी से पार कर गया। जैसे रास्ता चलते समय कोई व्यक्ति गाय के बच्चे के खुर से बने हुए गड्ढे को पार कर रहे, जब बरसात होती है वर्षा काल में बच्चे छोटे छोटे चलते हैं गाय के, तो उनके छोटे छोटे खुर से छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, उन गड्ढों में जल भर जाता है। तो इस अपार सैन्य सागर को पांडव ऐसे पार कर गए जैसे वत्स पदम पुत्र पदम, वत्स पदम गोवत्स के पैर के चिन्ह को पार कर। कोई रास्ता चलते समय यही विचार नहीं करता कि मैं गोवत्स पद को पार कर रहा हूं। ऐसे ही अर्जुन को पता भी नहीं चला कैसे कैसे इस कौरव सेना को पार कर गए। अर्जुन को खास करके मारने के लिए बहुत बड़ी तैयारी थी, सभी महारथी अपना अपना स्पेशल अस्त्र रखे थे, बहुत भरोसा था कि मैं अर्जुन को मार दूंगा। कर्ण से जब कवच और कुंडल लिए इंद्र ब्राह्मण के वेश में, तो महादानी दे दिया अपना जन्मजात कवच और कुंडल दे दिया देवराज इंद्र को, तो इंद्र देवता बड़े अनुराइज हुए। इंद्र कहा कि वीर तुम मुझे इतना बड़ा दान दिए हो, मुझसे कुछ मांगो। तो कर्ण ने यही मांगा था, आप मुझे शक्ति दीजिए, शक्ति के रूप में एक शक्ति बाण दीजिए, मैं केवल अर्जुन को मारना चाहता हूं। एक वीर मर जाए ऐसा बाण दीजिए। तब ब्राह्मण बने हुए देवराज इंद्र ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक शक्ति दे रहा हूं, बाण शक्ति बाण कहते हैं, एक व्यक्ति इससे निश्चित मर जाएगा। तो कर्ण बड़ा निश्चिंत रहता था कि मैं अर्जुन को मार ही दूंगा। उसी शक्ति पर बहुत भरोसा था उसको। क्योंकि ब्राह्मण का दिया हुआ वर देवराज इंद्र का दिया हुआ वर, तो दुर्योधन एक दिन बहुत प्रार्थना किया कि अब तुम पर ही मेरा भरोसा है। तुम कहते थे कि मेरे पास शक्ति है एक अग्नि, तो अब उसका प्रयोग करो। ऐसी घटना है हुई कि भगवान ने रात्रि युद्ध की घोषणा कर दी है, आज रात में युद्ध होगा। प्रतिदिन तो दिन में युद्ध होता था, रात्रि में बंद हो जाता था, पर उस दिन रात्रि में युद्ध की घोषणा करते हैं सभी वीर। कुछ विश्राम करके, भोजन आदि करके तैयार हुए रात्रि युद्ध के लिए। तो भीमसेन का पुत्र घटोत्कच आया था, उसी को भगवान ने कहा कि आज रात्रि युद्ध में तुमको कमाल करना है। तो घटोत्कच आकाश में उड़ करके सारे कौरव सेना पर प्रहार कर रहा था। इसको देख करके दुर्योधन घबरा गया और कहा कि एक अग्नि बाण मारो इसको। तो कर्ण कहता था कि मैं इसको अर्जुन के लिए रखा हूं, लेकिन इतना घनघोर युद्ध किया घटोत्कच कि विश्वास हुआ कि सबको मार डालेगा। दुर्योधन कहने लगा कि सबको मार ही डालेगा तो तुम उसके बाद अर्जुन को मार कर क्या करोगे, इसलिए इस पर शक्ति छोड़ो। तब कर्ण घबरा करके दुर्योधन की बात मान करके उस बाण को चला दिया घटोत्कच पर, वो तो गिरा, गिर करके मर गया घटोत्कच। लेकिन पांडव सेना में और सब लोग शोक कर रहे थे और भगवान हंस रहे थे। बहुत बड़ा संकट टल गया अर्जुन के जीवन में, इससे भगवान को प्रसन्नता हो रही। तो भगवान के हंसने पर युधिष्ठिर महाराज ने कहा, आप क्यों हंस रहे हैं, भीम का पुत्र मरा है तो शोक की बात। तो भगवान ने कहा, नहीं, शोक की बात नहीं, ये आनंद की बात है। आज अर्जुन का संकट बीत गया, इसके पास इंद्रदेव का द्वारा दी हुई शक्ति थी। मैं चाहता था कि इस शक्ति को छोड़ दे दूसरे पर, तो घटोत्कच वो अशुभ मर गया, ठीक हुआ, अर्जुन जी गए, अर्जुन मृत्यु से बच गए। इस तरह भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शोक पीड़ना खड़ पांडव रण नदी कैवर तक केशव, चूंकि तरण साधन भगवान का चरण कमल था। वत्स पदम कृत्वा कौरव सैन्य सागर पर वत्स पद की तरह करके अतरण तर गए। यह जन्म मरण का जो चक्र है, एक सागर की तरह अपार सागर की तरह, लेकिन इसको भी कोई भी भक्त भगवान के शरण लेकर के वत्स पद के शरण बना करके पार हो जाए आसानी से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान के नाम को जप करके कीर्तन करके इसको आसानी से पार कर सकता है। विशाल सागर को पार किया पांडवों ने, कौरव सैन्य सागर जिसमें बड़े बड़े तिमिंगल थे, बड़ी भय की स्थिति थी। उससे रण समुद्र को पार कर लिए। हम सभी इस भाव समुद्र में पड़े हुए हैं। अय नंद तनुज किं करम पततम माम विस्ने भवान रवे, कृपया तो पाद पंकज के धूली सतसम विचिंत। हे नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण, हम इस भवसागर में पड़े हुए हैं, हम आपके दास हैं, दास को पार कीजिए। भगवान का स्वभाव है पार करते ही है। अहम तो हम सर्व पापी जो मुख्य सामना, मैं पार करता हूं। भगवान कह रहे हैं अहम मैं तुमको सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मन। उसी कुरुक्षेत्र में भगवान ने यह उपदेश किया है जिसको भगवत गीता कहते हैं। भगवत गीता पर भगवान के परम भक्त श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखे हैं, व्याख्या की है, वो और सुगम है, आसान है। भगवान चैतन्य महाप्रभु यही कहते थे, जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको भगवद गीता की बात बताओ। यही हमारा कर्तव्य है, जिस जो भी मिले उसको भगवान की बात बताओ। कोई श्लोक हृदय में लग जाए कल्याण हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद।